الله 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 الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر ہر چیز بطور معاوضہ دینا چاہیں تو اس سے قبول نہ ہوگی یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے سبب ہلاکت میں ڈالے گئے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور درد دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ متصل آیات کریمہ میں انسانی مزاج کا ایک حال زیر بحث ہے اور کوئی بھی جو عمل اختیار کیا جاتا ہے اور اس معاملات کو اگر آپ دو حصوں میں دیکھیں ایک حصہ ہے عمل دوسرا حصہ ہے نتیجہ تو جو عمل یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ کفریہ ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو حصہ مبوس فرمایا ہے رہنمائی کا اس کا وہ غلط استعمال جو کلام ذاتی کی معنی و مفاہیم کو بدل کر خواہشات ذاتی کی تکمیل اور اس کوشش میں جو صرف قوت کی جا رہی ہے جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی آئی وہاں کے واقعات بیان ہوئے وہاں کے حال پر آیات جو ہیں اللہ کریم نے نازل فرمائیں سوال ہوئے جواب ارشاد فرمائے گئے لیکن وہ حصے محض اس وقت کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے بھی حالات بیان فرمائے گئے ایسے واقعات بیان فرمائے گئے جن سے متعلق قرآن کریم ہی بیان فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ جانتے تھے تو آپ کو ان واقعات سے آگاہی دی۔ اب ان واقعات کے بیان کو دیکھیں ان میں بھی ایک سبق ہے جو عمل اختیار کیا گیا اس کے مطابق نتائج جو ہیں وہ برآمد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خیر القرون کی ان عظمتوں میں جس نے زیادتی کی اور اس زیادتی سے متعلق جو ارشاد فرمایا گیا جس نے ورا اور نیکی اختیار کی اور جو انعامات وہاں ارشاد فرمائے گئے یہ بھی محض اس وقت کو نہیں ان ہستیوں کی عظمت اپنی اس زمانے کی شان اپنی لیکن کلام ذاتی اصول ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے کلام ذاتی سے دنیا کے استفادہ کے لیے غلط استعمال کیا اس کے نتائج بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ یہی پہلو یہی بات آج اگر ہم اپنے متعلق لیں گے تو یہی اصول آئے گا۔ پھر اسی اصول کے تحت جو بات میں نے عرض کی کہ دو عمل کو دو حصوں میں دیکھیں ایک حصہ جو عمل اختیار کیا گیا دوسرا حصہ جو اسی سے منسلک ہے چونکہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد عمل کے بعد جو نتیجہ مرتب ہوا وہ تو یہاں جب بات کی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو اس میں یہود و نصارہ اس وقت موجود تھے چونکہ ان کے پاس اللہ کی بھیجا ہوا کلام اور پھر اس میں آمیزش جو وہ خود اپنی مرضی اپنی ضروریات اپنی منشا اور وقت کے ساتھ ساتھ کرتے آئے لیکن وہ ساری تبدیلی جو تھی وہ اپنی خواہشات کی جو تکمیل تھی وہ یہ سارے کا سارا بہر دنیا سے متعلق اور جو حصہ دنیا سے متعلق ذاتی خواہشات پر لایا جائے گا وہ تجاوز میں ہوگا اور دنیا ہی کو جب اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت لایا جائے گا تو یہی صبح و شام انسان کو اللہ جل شانہ کے قرب کا سبب بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے اور ان کو فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، پھر ان کی نصیحت کا سبب بھی کلام ذاتی فرمایا گیا اور پھر وہ پہلو بھی فرمایا گیا، لیس لہا من دون اللہ ولی یوں ولا شفیع، کہ روز معاشر کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہاں سے جو ابتدا کی گئی غیر اللہ کو مانا گیا، حزب الشیاطین کا چناؤ کیا گیا، تو وہاں پھر جب سوائے اللہ کے اور کوئی حصہ ہے نہیں جہاں سے مدد نصیب ہو سکے، تو پھر کیسی لاچاری کی وہ موقع ہوگا اور وہ کیسی آنکھیں ٹھہر ٹھہر جا رہی ہوں گی کہ جب وہ حقائق سارے سامنے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، کہ اگر یعنی روح زمین کی ہر شے بطور معاوضہ دینا چاہیں تو اس سے قبول نہ ہوگی، لا يؤخذ منها، وہ قبول نہیں ہوگی۔ حیات دنیا میں ہم بام لین دین میں کچھ لیتے اگر ہیں تو کچھ دینا پڑتا ہے، اور اگر کوئی کچھ دے رہا ہے تو اسے اس بدلے میں واپس کچھ نہ کچھ میسر آتا، ایک سودا ہے جو ضروریات زندگی میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے، معمولات زندگی کے عمومی پہلوؤں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی کی مثال اس لیے فرمائی گئی ہے کہ جس زندگی میں ہم اپنے لمحات بسر کر رہے ہیں، اس کے جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو ان ساروں میں جو بام لین دین ہے تو ہم جہاں کہیں سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے تو اس کے مطابق افزانہ دے دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مدد سامعین کران اگر کوئی اپنی پسند لینا چاہے تو وہ پھر صرف معاوضہ نہیں دیکھتا، وہ اپنی پسند کی تکمیل کے لیے قیمت چاہے کہیں چلی جائے جو کچھ اس کو میسر ہو اسے دیتا ہے، یعنی کسی صورت میں بھی مجبور جو ہے وہ افزانہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، اور نہ کوئی وہاں افزانہ دیا جا سکے گا۔ وہ انتعادل کوئی شے سے مراد جب آپ یہاں لیتے ہیں تو جہان پورا، یہ خلق پورا بھی اگر اس کی ملکیت ہو، یہ پوری دنیا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے ترجمے میں جو حصہ بریکٹ میں لکھا ہے وہ آپ نے فرمایا، اگر روئے زمین کی ہر چیز بطور معاوضہ، یعنی اگر ہر شے اس کی ملکیت ہو تو اس کے باوجود وہ سارا دے کر وہاں سودا نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، تو اسے قبول نہ ہوگا۔ بنیادی طور پر جب ہم ملکیت کی بات کرتے ہیں تو میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ زمینوں پر جا رہا تھا تو کسی نے جو ساتھ دوست تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ کی زمین کتنی ہے یا کس طرف ہے، ان کا کچھ سوال تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس ایسے اشارہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی زمین۔ تو اس نے متجسس ہو کر جب آپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا، میاں مجھ سے پہلے بڑے مالک کہلائے ہیں، آج اگر میں یہ کہوں کہ یہ زمین میری ہے تو کیا میں یہیں رہوں گا؟ کیا یہ زمین میری ہی رہے گی؟ مجھ سے پہلے کتنے مالک آئے ہیں، جانے مجھ سے بعد کتنے مالک آئے ہیں۔ تو حقیقی ملکیت تو اللہ رب العالمین کی ہے، تو یہ اللہ کی زمین ہے، آج میرے پاس ہے کل جانے کس کے پاس ہو۔ تو جب ہم دنیا کی ملکیت کو دیکھیں گے اور جس دنیا کی ملکیت کے لیے، جس حیثیت کے لیے ہم حق کو چھوڑتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی ہماری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کا اس فرمان میں یہ اشارہ فرمانا کہ جب قبر میں اترتا ہے کوئی تو اس کے ساتھ سوائے اعمال کے اور کوئی شے نہیں جاتی، ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جتنی حیثیت کا بھی کوئی ہو، جتنی شان و شوکت سے آپ جنازہ اٹھا لیں، وہ شان و شوکت تو واپس آ جاتی، قبر میں تو وہی اترتا ہے جس کی موت واقع ہوتی ہے۔ जितना दर्द भी हो, जितनी तकलीफ भी हो, अजीज व अकारब सारे पलट आते हैं, साथ कब्र में दफन तो कोई नहीं। तो इस दुनिया को, इसके बावजूद कि अगर किसी को ये धोखा है कि मेरी मलकियत है, और अगर उसकी मलकियत जान भर की हो तो भी इफ़ज़ाना नहीं लिया जाएगा। हालांकि मलकियत कुल्ली है ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ये अमानत है, और इस अमानत को जब आप देखेंगे तो ये सिर्फ ज़ाहरी जो असबाब है वहाँ तक की बात नहीं आएगी, इसकी नज़ाकत हमें अपने वजूद तक ले आएगी। और दीन इस्लाम में अपने वजूद की ज़रूरत पूरी करना और उसका ख्याल रखना ये भी हुक्म है। और इस पर भी सवाल है कि अगर अपने वजूद की ज़रूरत ख्याल ना रखा जाए तो ये भी फरमान है कि अपने वजूद का भी हक है तुम। तो जहाँ जहाँ वजूद की ज़रूरियात की तकमील है उन ज़राए का भी हुक्म है, और इस वजूद की जो बात है जिस पर असल बहस आ रही है इसके हिस्सों पर भी बयान फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इबादत के हवाले से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, रात भर की सजदों के हवाले से आपके हुजूर बात हुई, रोज़े गैर रमज़ान के जो रोज़े हैं उनसे मुतल्लिक बात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने वजूद को ज़रूरी जो आराम है वो भी दो, इसका हक है। इसी तरह ज़िंदगी की बात आती है, ज़िंदगी और मौत को अगर आप देखें तो जो खुदकुशी करता है उसकी मौत को हराम फरमाया गया। अब जब इसकी तहकीक में जाएंगे, पहली और बुनियादी बात तो ये है कि हक वो है जो फरमा दिया गया है। क्यों है, कैसा है, न इतना हमारा शऊर है, न इतनी दस्तरस है, और न यहाँ को क्यों और कैसे का सवाल है। दूसरा पहलू जब आप अगर देखें तो ये वजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जब इसे मौत का वक्त उसने देना है, तुम कौन होते हो इस हयात को मुनकता करने वाले। ये वजूद उसका है, ये जहान उसका है, तो मलकियत हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और इस धोखे में जब कोई पड़ जाए कि ये मेरी मलकियत है तो ये लफ्ज़ मेरा और ये ज़बान का कहना उसका हमा वक्त या हमेशा का साथ नहीं देगा, ये ज़बान भी साथ छोड़ जाएगी। तो मौजूद सामीन कराम, जब वजूद की बात आएगी तो फिर वजूद के संभालने की बात आएगी। यहाँ बात जिस हिस्से की इरशाद फरमाई जा रही है कि कोई दोस्त और कोई सिफारिश करने वाला नहीं, कोई इफ़ज़ाना नहीं, हम एक बात का जो पहलू है वो देख रहे हैं, उस पर बात हो रही है। इसी का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि जब किसी चीज़ को मना कर दिया जाए तो उसके मुकाबिल जो शह वो अज़ खुद उसका हुक्म आ जाता है। जैसे मैं और आप अगर मुखातिब हैं तो इस वक्त को ले लें, अगर हम कहें कि ये दिन है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि रात नहीं है, और अगर हम कह दें कि रात है, आज रात है, हम रात में बात कर रहे हैं और रात है, तो फिर ये अज खुद समझ लिया जाएगा कि रात है तो मुराद दिन नहीं है। अब अगर दिन है तो मुराद है कि रात नहीं है। इसी तरह जब ये तजावुज़ की बात की जा रही है, ज्यादती की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो हिस्से मानने के हैं वो फिर आ जाएंगे। जब अपनी ज़ात से निकला जाएगा और जो कुछ है अल्लाह जल्ला शानुहु का माना जाएगा, तो फिर वो अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार करने का हुक्म दिया, अपने रू बरू तरबियत फरमाई, अजमा आज हम तक पहुंचाने का रब कायनात ने सबब फरमाया, रोज़े माशर तक इस इम्तिहान गाह में हर एक तक ये हक पहुंचेगा, तो जब उस पहलू को देखेंगे तो फिर वो तामीर शुरू हो जाएगी, वो पहलू नसीब होना शुरू हो जाएंगे, और वो रास्ता जो इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी मनाजिल में रज़ाए बारी ताला है, कुर्बे इलाही है। अभी अल्लाह करीम का अपना इनाम है, वो बेहतर जानता है कि उसका और उसके बंदे के माबान क्या रिश्ता है, उसने उस पर क्या इनाम अता फरमाया। तो उस तरफ जब आएंगे तो फिर समझ आएगी कि तामीर के लिए कौन से हिस्से ज़रूरी हैं, जो कुछ अल्लाह जल्ला शानहू ने कलाम ज़ाती में इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को आप जब बात करते हैं तो उसमें हयात मुबारक का वो हिस्सा जो लगभग 40 साल का मक्का मुकरमा में बेशत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने बसर फरमाया, फिर वो हिस्सा जो 13 साल नबुवत का, फिर वो हिस्सा जो मदनी ज़िंदगी में लगभग 10 साल का है, इस सारे हिस्से को देखते हुए आप उस हिस्से को देखें जो 40 साल ज़िंदगी आपने मक्का मुकरमा में बसर फरमाई, तब भी आपकी हयात मुबारक का एक एक हिस्सा वो है कि जिसे मुनकर काफर मुशरिक हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया कि आप सादकुल अमीन हैं, और ये वो हिस्से आपने ज़िंदगी के बसर फरमाए हैं अल्लाह जल्ला शानहु के करम और एहसान से अपने रब कायनात की हिफाजत में बसर फरमाए हैं कि वही असूल व ज़वाबत फिर अल्लाह करीम ने मखलूक को अता फरमाए कलाम ज़ाती में। जब बेहसत का ऐलान हुआ तो अल्लाह करीम ने ये कलाम हमें अता फरमाया। अब जब इस कलाम के अता की बात आएगी तो क्या आज मैं ये तलावत नहीं कर रहा आपके रूबरू, क्या आप समात नहीं फरमा रहे, क्या इसके असूल व ज़वाबत जब दुनिया बरज़ख या आखरत की बात कर रहे हैं तो इस राह के मुसाफिर मैं और आप नहीं हैं। तो ये वो पहलू हैं जो अल्लाह करीम ने अता फरमाए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी इन असूलों पर बसर फरमाई। तो इन सब को लेकर जब आओगे तो ये दूसरा हिस्सा वो जो हकीकी है और हक है उसकी बात आ जाएगी। तो फरमाया उलाइक अल्लज़ीन उबसलू बिमा कसबू, यही लोग हैं जो अपने आमाल के सबब हलाकत में डाले गए। अब बात हो रही थी अमल और नतीजे के हवाले से, तो आज ये जो ज़िंदगी है दारुल अमल है, इसे दारुल अमल कहा जाता है, दारुल इब्तिला कहा जाता है, इम्तिहान गाह कहा जाता है। यहाँ हम जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कैसे बसर कर रहे हैं, असूल व ज़वाबत क्या अख्तियार कर रहे हैं, ये अमल। अब इस पर नताएज मुरत्तब होंगे और इन नताएज के मुरत्तब होना इसी जहान फ़ानी में शुरू हो जाता है। सी बाहुम फी वजूहिम मिन असर सुजूद, अगर पेशानियाँ सजदों से अल्लाह करीम का नूर आयां होना शुरू हो जाता है, सरबसजूद पेशानियों से उसकी हजूरी का नज़र आना चेहरों पर वाज़े हो जाता है, तो इसी तरह जो जो लोग जुल्म करते हैं, जो जो लोग ज़्यादती करते हैं, जो जो लोग तजावज़ करते हैं, जो जो वक़्त उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल हो रहा होता है उनके चेहरों पर वो तासरात आयां होना शुरू हो जाते हैं। अपने गिर्दो पेश हम जब देखते हैं तो दोनों किरदार नज़र भी आते हैं अमली तौर पर, और दोनों किरदार का वो सूरत जो आया हो रही होती है वो भी देखने को मिलती है। लेकिन हमेशा जो बात ऐसे मामले में मैं अर्ज करता हूँ कि ये वो मामला है जो अल्लाह और उसके मखलूक के माँ बहन है। हम कौन हैं कि किसी के मुतल्लिक कोई राय कायम करें, और इस्लाम का हुक्म है कि हर एक के लिए अच्छी राय कायम करो ताँ के वो ज़्यादती ना करें। तो सबसे ज़रूरी जो हिस्सा है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को देखा जाए, अपने मामलात को देखा जाए, और किसी भी अमल के लिए जानना ज़रूरी है। मैं अगले दिन एक रिकॉर्डिंग में बैठा था तो वहाँ मुझसे सवाल किया गया और मौजू था बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझसे जो साहिब तशरीफ़ रखते थे उन मुअज़्ज़ज़ ने एक सवाल किया। वो फरमाने लगे कि आज का जो नौजवान है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सबक कैसे हासिल करे जो इसे अमली ज़िंदगी में काम आए। तो बुनियादी तौर पर ये सवाल बनता ही नहीं है। तो मैंने वहाँ जो अर्ज़ करना था मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल बुनियादी तौर पर बनता ही नहीं है, क्योंकि बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल का जवाब है, यहाँ कैसे का तो कोई नुक्ता बनता नहीं। फिर किसी उम्र की कैद नहीं है, इसलिए कि किसी के पास कोई फुर्सत है नहीं। अब कोई बचपन में है तो उसे मालूम है कि वो लड़कपन देखेगा? अगर कोई लड़कपन में है तो क्या उसे मालूम है वो जवानी देखेगा? कोई जवान है तो उसे पुख्तगी या बुजुर्गी का कोई समझ है कि मेरे भी सफेद रेश बाल होंगे? कितने हमारे अजीज व अकारब हैं, जानने वाले हैं, रोज कितना कुछ हम सुनते हैं। अभी जो सांस लिया है नहीं मालूम कि दूसरा सांस नसीब होगा कि या नहीं नसीब होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौजवान नहीं, हर एक के लिए रहनुमाई है। और वो कैसे है उसके लिए जानना जरूरी है। जानने के लिए दीन इस्लाम का समझना सीखना, तब जान पाएंगे, तब इल्म हासिल कर पाएंगे। अगर हम दीनी इल्म उलमा के सुपुर्द कर देंगे, अल्लाह उलमा की मेहनतें कबूल फरमाए, वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं, लेकिन कभी दुनिया में ये हमने नहीं जाना ना ये समझा कि बच्चे को जिस इल्म के लिए भेज रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं, यहाँ काम उस्ताद का ही इल्म हासिल करना है, बच्चे का नहीं। दुनिया में ये बात हमें समझ आती है तो दीन में क्यों नहीं समझ आती? तो जब हम जानेंगे तो फिर कोई उम्र का हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जिसको रहनुमाई नसीब न हो इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर एक जहली नुक्ता अर्ज करता जाऊं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत करते हैं जैसे भी हैं, अल्लाह करीम कमी बेशियां माफ फरमाए। इसमें हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि सीरत पाक का मुताला करते रहो, जितनी सीरत पाक पढ़ोगे उतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो और बढ़ता चला जाएगा। तो जब वो इश्क और मोहब्बत बढ़ेगा तो जो जो हिस्से आपने जिंदगी के जिस बहर के हिस्से जिस तरह इख्तियार फरमाए हैं, फिर उस तरह इख्तियार करना नसीब होता चला जाएगा। और जब ये सारा कुछ छोड़ दिया जाए, इस सारे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए, तो फिर ये हिस्से हैं जिन पर आयत करीमा बड़ा वाज़े इरशाद फरमा रही हैं, उलाइकल्लज़ीना उब्सलु बिमा कसबू, यही लोग हैं जो अपने आमाल के सबब हलाकत में डाले गए। अब लहुम शराबुम मिन हमीम वअज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून। जब कुरान करीम में अजाब और सवाब, पसंद और तकलीफ, इन मौजूआत पर चीज़ें मिलती हैं तो ये बात बड़ी वाज़े समझ आती है कि ये जो इंसानी वजूद है ये वहाँ भी अपनी ज़रूरियात के तहत होगा। अब उसकी तकमील कैसे होगी, मिजाज क्या होगा, ये अलग बात है। लेकिन जब दोज़ख के हिस्सों की बात आती है तो प्यास और भूख की भी इरशादात मिलते हैं। जन्नत की बात इनामात की जब आती है तो जन्नत के इनामात में खाना पीना, आराम करना, बैठना, खुशकलामी, यानी मिजाज इंसानी जो है उसमें जो ये ज़रूरत है इसका भी इम्तिजाज उसी तरह रहेगा। और हलाकत के पहलू जब इरशाद फरमाएंगे तो जब वो वहाँ पहुँचेंगे फरमाया लहुम शराबुम मिन हमीम, और उनके लिए पीने के लिए खौलता हुआ पानी होगा। आदी शरीफ में जब इस खौलते हुए पानी से मुतल्लिक आप देखें तो इसकी हिद्दत इतनी ज़्यादा इरशाद फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसे मुंह के करीब लाते लाते, अभी पिया नहीं, इतनी हिद्दत है कि चेहरे का जो है ये गोश्त उधड़ कर गिरना शुरू हो जाए, इतना हिद्दत है इसमें। इतना ये जो फरमाया खौलता हुआ पानी, हमारे नज़दीक तो ये खौलता हुआ जो हम देख रहे हैं ना उसमें भी हाथ नहीं डाला जा सकता, अगर उंगली डालें तो खौलते हुए पानी में शायद हड्डी वापस आ जाए, जिस्म तो वहीं रह जाए। तो जब वहाँ के खौलते हुए पानी की बात की जाती है तो वो उसका खौलना ऐसा है कि जब वो पानी करीब आएगा तो पीना तो बाद की बात है, चेहरे की जो खाल है ये उधड़ना शुरू हो जाएगी, गोश्त गिरना शुरू हो जाएगा। और जब वो पिएगा तो वो पीना आप देखें कि करीब आना वजूद को इतना नुकसान दे रहा है तो फिर गले से आंतों तक फिर क्या हाल होगा, कैसे चीज़ें जो हैं वजूद के हिस्से टुकड़े टुकड़े और कटते चले जाएंगे। तो ये इरशाद फरमाया गया। अब जब यहाँ इन पहलुओं को बात की जाती है तो एक राय ये आती है जी कि जन्नत के अजाबात सुनाकर आप डराते रहते हैं, फिर जब दोज़ख़ के अजाबात सुनाकर डराते रहते हैं, और फिर जब इनामात की बात आती है तो फिर कहते हैं इनामात का लालच देकर बात करते रहते हैं। असल बात जो नुक्ता समझने की है वो ये है मौज़ सामीन कराम, ये हकायक हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आगाही हमें इरशाद फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे रात में किसी वीराने में, किसी बाहर सहरा में कोई आग का अलव जल रहा हो और उस रोशनी की तरफ चारों तरफ से पतंगे जो हैं वो टूट टूट कर गिर रहे हैं और आग का ईंधन बन रहे हैं और कोई उन्हें दीवाना वार बचाने की कोशिश कर रहा हो हर तरफ से, इस तरह अल्लाह की मखलूक को दोज़ख़ से बचाने की आप कोशिश फरमा रहे हैं। अब जब इन नतायज की बात आएगी तो इन नतायज पर किस पर नतायज मुरतब हुए? अमल पर। अमल कब है? जब सूर फूंक दिया जाएगा तो क्या अमल होगा? नहीं, वो तो नतीजे का दिन है। सूर फूंक दिए जाने से पहले और हमारे इस कलाम या इस जिंदगी के दरमियान को हयात है? हाँ जी है। कौन सा आलम है? आलम बरज़ख है। वो कौन सी जगह है? वो गोर है, वो आगोश है कब्र की, जिसमें हम अपने प्यारों को जिस पर मौत वाक़ होती है उसे उतार दिया जाता है, या जो जो इस ज़मीन और इस खाक के हिस्से बनते चले, सारे दफन नहीं होते, वजूद गल सड़ जाते हैं लेकिन हिस्सा इसी ज़मीन का बनते चले जाते हैं, ज़रात वापस इसी ज़मीन में शामिल होते चले जाते हैं। तो ये वो ज़िंदगी का हिस्सा है जो दारुल अमल है, जिस पर इन्हिसार आएगा। और जो गलती करेगा, अब यहाँ जो अजाब का बयान फरमाएगा, क्यों? बिमा कानू यकफुरून, इसलिए कि कुफर करते थे। लहुम शराबुम मिन हमीम, उनको पीने के लिए खौलता हुआ पानी, वाजाबुन अलीम, और दर्द देने वाला। क्यों? सबब बिमा कानू यकफुरून, इसलिए कि कुफर करते थे। ये अमल का हिस्सा कब है? आज है, जिसमें मैं और आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब इस बसर करदा जिंदगी को देखेंगे तो किस पैराए में बसर कर रहे हैं? मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ अपनी औलाद की पढ़ाई के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, मैं भी चाहता हूँ कि वो एक दुनिया में एक कामयाब जिंदगी जो है वो बसर करें। क्या जितनी मैंने तरबियत अपनी औलाद की इस दुनिया की जिंदगी की किया, क्या मैंने उसे उखरवी हिस्सों से आशना करने की कोशिश की है? ये कब मुमकिन होगा? ये तब मुमकिन होगा जब मैं खुद इस राह का मुसाफिर हूँ। आज जब बात की जाती है, हम इनहितात में भी इस हद को पहुंच गए हैं कि इस्लाम या इस्लामी हुलिये को तमस्खराना बयान करना मुसलमान मुआशरे में आम है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो बड़े नमाजी हो गए हो, अगर किसी ने दाढ़ी रखी है तो तुम मौलवी हो गए हो। लफ्ज मौलवी, लफ्ज दाढ़ी, नमाजी, ये क्या है? गौर करें। आप किसी वॉक ऑफ लाइफ से हों, किसी हैसियत के हों, आपका कोई नज़रिया है? और अगर नज़रिया मज़हब में इस्लाम है तो फिर इस्लाम आपकी पसंद से होगा, उसके हुलिये मेरी और आपकी पसंद से होंगे, या वो असूल व ज़वाबत होंगे जो अल्लाह और उसके हबीब ने मुकर्रर फरमाए। मैंने नहीं देखा कि कोई इस दर्जे का भी बदबख्त हो कि जिसे मुसलमान का मतलब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात कर रहा हो तो वो फिर इस तजावज तक आए। लेकिन ये मैंने इम्तिजाज देखा है, इश्क़े मुस्तफ़ा की भी बात होती है, अल्लाह के करम और एहसान दुनिया में नसीब हूँ इस पर भी बात होती है, क़यामत के बख्शे जाने पर भी बात होती है। लेकिन जब असूल इस्लाम के आए तो उस पर तजीक आमेज रवैया नहीं समझ आता कि ये कैसा है। आप बच्चे की पैदाइश पर चाहते हैं اسلامی روایت جو ہے اس کے مطابق میرا جو بچہ ہے اس کے کان میں اذان دی جائے, اس کا نام اسلامی رکھا جائے. آپ چاہتے ہیں کہ جو جو اسلامی احکامات اس کے مطابق وجودی ضروریات پوری کر جائے. آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی شادی ہو تو اس کا نکاح جو ہے وہ اس طرح ہو جس طرح اسلام نے فرمایا. آپ چاہتے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا جنازہ اس طرح ہو جس طرح اللہ نے حکم. اس سارے کے بیچ جو عمل ہے وہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے ماننے سے ہو, یا ان اعمال کو جو اختیار کر رہے ہیں وہ ان پر مزاح جو کرنا ہے یہ بہت بہتر. نہیں, ایسی نہیں بات. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو بندہ برتاؤ کرتا ہے, جو کلام کرتا ہے, جو اظہار کرتا ہے, یہ وہ حصہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک بیج ہے جو نیت میں اس کے نیاں خانے دل میں ہے, وہاں سے یہ اظہار آ رہا ہے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائیں کہ ایک تو زندگی میں بے عملی ہو اور پھر دوسرا اسلامی احکامات کا تمسخر اڑایا جائے. اب جب اسلامی احکامات کا تمسخر اڑایا جائے گا, ایک ایک حکم کو اٹھاؤ, یہ حکم کہاں سے آیا؟ کیا یہ حکم مولوی صاحب کا ہے؟ کیا یہ حکم مفتی صاحب کا ہے؟ کیا یہ حکم پیر صاحب کا ہے؟ ایک ایک بات اٹھا کر دیکھو, ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائے. اور کوئی بات آپ نے ارشاد فرمائی نہیں جو وحی اللہ نہ ہو. اللہ جل شانہ کا فرمان جو آپ نے ارشاد فرمایا. تو جب بات کو کھولو گے, جب اس کی تحقیق میں جاؤ گے, تو جتنی سمجھ آئے گی اتنی اس کی نزاکت کا احساس بھی ہوتا چلا جائے گا. اور پھر جب ان عذابات کی بات کرتے ہو تو اللہ رب العالمین انعامات بھی ارشاد فرمائے. آپ اسی زندگی کو دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں, پھر یہ جتنے لوگ ہیں ان کی استعداد اپنی ہے, ان کی حیثیت اپنی ہے. ہمارے نزدیک عمومی زندگی میں شاید صاحب جائیداد ہونا, صاحب حیثیت ہونا, دولت مند ہونا بہت بڑی بات. بڑے بڑے دولت مند خودکشیاں کر جاتے ہیں, ہمارے معاشروں میں مثال. بڑے بڑے طاقت رکھنے والے خودکشی کر جاتے ہیں. کیا کوئی خودکشی خوشی سے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس ساری دولت, اس ساری طاقت کے باوجود اسے خوشی نصیب نہیں ہوئی, تو پھر کوئی شے اور ہے جو مطمئن کرتی ہے. اسی طرح ہم کتنے کمزور لوگوں کو دیکھتے ہیں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں بڑا تنگ ہوں, میری صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, میں جی بڑے تنگ دستی میں زندگی بسر کر. انہی میں کتنے لوگ ایسے مل جاتے ہیں, شاید انہوں نے دن کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں, شام آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. اب تعداد کم ملتی ہے لیکن یہ امتزاج معاشرے میں ہر حیثیت میں موجود ہے. اب ان دونوں میں کیا حصہ ہے جو اطمینان کا سبب بنتا ہے سوائے تعلق ملاک, سوائے اتباع محمد رسول اللہ؟ کچھ حاصل کر لیں آپ اطمینان نہیں حاصل کر سکتے. اس زندگی کی, اس دنیا کی زندگی میں جو ٹھہراؤ ہے یہ حیثیتوں سے نہیں ہے, یہ راسخ ایمان سے ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہو. جب ہم صاحب ایمان کی بات کرتے ہیں, آمنو کی بات کرتے ہیں, تو عمل الصالحات کی بات آئے گی, عمل صالح کی بات آئے گی. تو پھر یہ سارا وہ پیرائے ہے جو انعام کی طرف لے جائے گا. اور جنت کے عذابات کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے کم جو عذاب بتایا جاتا ہے جنت, اس میں دوزخ کے عذاب میں سب سے جو کم عذاب ہے وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتی ہوگی اور اس کی حدت دماغ کو ایسے جیسے کھولتا ہے اس طرح کھولا رہی ہوگی, اور جسے وہ آگ کی جوتی پہنائی گئی ہوگی اس کے نزدیک تمام اہل دوزخ میں سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت میں وہ ہوگا. پھر حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ان کی خوراک کا کوئی ایک حصہ یا جو وہ پی رہے ہیں اس کا کوئی ایک قطرہ دنیا میں, دنیا کی زمین پر گر جائے تو جو اسباب ہیں دنیا کے وہ مٹ جائیں, ختم ہو جائیں. کوئی خوراک کا خوشہ دنیا پر اگر وہ آ جائے, گر جائے, تو اتنا تعفن پھیل جائے कि जिंदगी महाल हो जाए, मफहूम आली अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखते हैं तो अहले जन्नत का जो इनामात बयान फरमाए जा रहे हैं कि फरमाता है कुरान करीम, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी जो पूरी ना हो। अब जब हम यहां बैठकर देखते हैं, हर ख्वाहिश पूरी होगी तो हमें बहुत बड़ा इनाम लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इनाम अहले जन्नत का है वो दीदारे बारी ताला है कि उन्हें अल्लाह जल्ला शानहू का दीदार नसीब होगा। अब किस दर्जे का है, किसे एक बार हुआ, किसे कितने अरसे बार हुआ, किस हैसियत में ईमान में दार दुनिया से उसे जाना नसीब हुआ, किसे बार बार दीदार बारी ताला नसीब हो रहा है, अब उसकी जो कैफियत है वो बयान में न को बयान मैं कर सकता हूँ, न मैं आपको समझा सकता हूँ। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारी गलतियाँ और गुनाह माफ़ फरमाए, ये दुनिया की जिंदगी जो मसाइब में हम देखते हैं इसे सहल फरमाए, और दुनिया से जाना बहालत ईमान नसीब हो। बड़ा दूर फासला है, आप देखें ना यहाँ से जिंदगी गुजरेगी, कैसे गुजर रही है। हम तो जगह जगह ठोकरें खाते हैं, जगह जगह गिरते हैं, रब्बे कायनात मेहरबानी फरमाते हैं हमारे हाल पर। तो ये उसका करम और एहसान रहे कि टूटती सांसें ईमान से नसीब हों, बरज़ख से गुजरते हुए रोज़े माशर, फिर रोज़े माशर के हिसाब किताब से पुल सरात, फिर वो बात आए। लेकिन अल्लाह जल्ला शानू के हजूर अपनी कमाईगी का एहसास और उसके करम और एहसान कि वो करम और एहसान फरमाएगा इस चाहत के साथ जाना नसीब हो, तो फिर वो बात जो दीदार बारी ताला की नसीब होगी वो उस दीदार के ही से समझ आएगी। मैं तो कम इल्म हूँ, नहीं बयान कर सकता। ये वो हदूद हैं जो हमारी दस्तरस से बाहर हैं। हम तो उतना जान सकते हैं जितना हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके बाद तो हमारी दस्तरस नहीं है। अल्लाह जाना और ये कैफियत का हासिल करना नसीब फरमाए। फिर एक नुक्ता और अर्ज करूंगा, हम मुआशरे की खराबी पर बहस करते हैं, बात करते हैं, एतराज करते हैं। इस खराबी या कमजोरी का सबब मुआशरा खुद ही होता है, और जब मुआशरे पर बहस आएगी तो मुआशरा मैं भी उसकी एक इकाई हूं, आप भी उसकी एक इकाई। हम अमल को दूसरे के रद्द अमल में इख्तियार करते हैं। अगर मुआशरे में खराबी है तो इसका मतलब है हर तरफ बुराई है। अब जब हर तरफ बुराई है तो उसके जवाब में मैं बुरा कर रहा हूं, तो जब मैं भी बुरा कर रहा हूं बुराई के जवाब में, तो फिर इसका मतलब है कि ताफुन मजीद बढ़ता चला जाएगा। इस जिंदगी को और इस जहान को देख कर ना जिए, आखरत को देख कर जिए। बुराई को बदले में बुराई ना दें, बुराई के बदले में अच्छाई आएगी। तो जहां अंधेरा हो वहां जब रोशनी आती है तो अंधेरे का वजूद खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर हम मुकल्लफ नहीं हैं नताइज के, नताइज अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में, हम मुकल्लफ हैं अमल करने के। अपने अल्लाह के लिए हम अमल इख्तियार करें, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इसी दुनिया को, इसी दुनिया में जिंदगी के बसर करने को, इसी दुनिया के शबो रोज में जिंदगी बसर करते हुए आखरत को रोज़े माशर को देखते हुए जाएं। अल्लाह करीम हमारा ये सफर सहल और आसान फरमाए, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। इस उम्मा जो अपने किरदार से जलील हो रही है, अल्लाह करीम हमें साले किरदार अता फरमाए, इस जिल्लत हमें जिंदगी से हम निकल सकें। मैं रोज सुनता हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के मुतालिक, और मैं दो पहलू सोचता हूँ, एक उनकी तकलीफ सोचता हूँ, फिर अपना हाल देखता हूँ। अल्लाह करीम दोनों सूरतों में बेहतरी की सूरत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
الله 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 اللہ.